आज है 29 अक्टूबर दिन गुरुवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूँ सुशीला सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में किया अधिक मतदान।
हाँ, महंगाई तो है, तो ये सब सोच समझ के दिए गए हैं। अब देखिए अब क्या होता है। अब तो हम लोग वोट दिए हैं, अब आगे सरकार जो बनते हैं वो क्या करते हैं।
क्या यूपी की तरह बिहार में कमाल दिखा पाएंगे अमित शाह? दिल्ली में भारत अफ्रीका सम्मेलन का आखिरी दिन, भारत को कितना होगा फायदा?
भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमिक बहुत बड़ी, तो अफ्रीका एक ऐसी जगह जहाँ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनकी कमोडिटी जो प्राइमरी कमोडिटी जिसको कहते हैं उसकी हमें जरूरत है, जैसे ऑयल हो, नेचुरल गैस हो।
सूखे के साथ किस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं उस्मानाबाद के लोग, सुनेंगे विशेष रिपोर्ट, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में भी वोट डालने के मामले में महिलाएं पुरुषों से आगे रहीं। तीसरे चरण की 50 सीटों पर कल हुए मतदान में कुल 54% महिलाओं ने वोट डाले। वहीं वोट डालने वाले पुरुषों का प्रतिशत 52.5 रहा। तीसरे चरण में कुल 53.32% वोटरों ने मतदान किया। बिहार चुनाव के पहले दो चरण में भी महिलाएं पुरुषों से आगे रही थीं। सीरिया संकट के हल के लिए वियना में होने वाली बातचीत में ईरान भी शरीक होगा। ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ शुक्रवार को इस बातचीत में हिस्सा लेंगे। ये पहला मौका होगा जब ईरान अमेरिका के साथ ऐसी बैठक में शरीक होगा। सऊदी अरब का कहना है कि इस बैठक से साफ हो जाएगा कि ईरान और रूस समाधान का हल तलाशने के लिए कितने गंभीर हैं। वहीं अमेरिका ने कहा है कि संकट के तत्काल समाधान की उम्मीद लगाना ठीक नहीं होगा। इस बातचीत में रूस, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की भी हिस्सा लेंगे। फीफा के निलंबित अध्यक्ष सेप ब्लैटर ने कहा है कि 2018 वर्ल्ड कप को लेकर मतदान होने के पहले ही रूस को मेजबानी देने पर सहमति बन गई थी। ब्लैटर ने रूस की समाचार एजेंसी तास से बातचीत में ये भी बताया कि मतदान के वक्त आखिरी समय में हुए बदलाव की वजह से 2022 विश्व कप की मेजबानी कतर को मिली। समझौते के तहत ये मेजबानी अमेरिका को मिलनी थी। उन्होंने इस बदलाव की वजह फ्रांस के दखल को बताया। ब्लैटर ने कहा,
It was agreed inside the group that we go to Russia because there's never been in the Eastern Europe.
समूह के अंदर ये सहमति बन गई थी कि हम रूस का समर्थन करेंगे क्योंकि पहले कभी पूर्वी यूरोप में वर्ल्ड कप नहीं हुआ था। 2022 के लिए हम अमेरिका के पक्ष में रहेंगे। ऐसे में दो सबसे बड़ी राजनीतिक शक्तियां वर्ल्ड कप की मेजबानी करती। तब तक सब सही था जब तक कि सरकोजी कतर के शहजादे के साथ मीटिंग में नहीं आए। उन्होंने कहा कि कतर को मेजबानी मिलना ठीक होगा और इससे बदलाव हुआ। सेप ब्लैटर के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों ने पॉल रॉयन को स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया है। नए स्पीकर के लिए आज मतदान होगा। रेयान जॉन बेनर की जगह लेंगे। जॉन बेनर पद छोड़ने के पहले बजट पास कराना चाहते थे। बुधवार को प्रतिनिधि सभा ने 2 साल की बजट डील को पास किया। ग्रीक कोस्ट गार्ड ने नाव डूबने के बाद समुद्र में फंसे 240 प्रवासियों को बचा लिया है। इस हादसे में 3 लोग डूब गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में 2 बच्चे थे। नाव में कितने लोग सवार थे इसकी जानकारी नहीं हो सकी है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बिहार से, जहां कल विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में भी महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया। 6 जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए मतदान में सबसे अधिक हिस्सेदारी बक्सर जिले के मतदाताओं ने की, जबकि पटना में सबसे कम मतदान हुआ। एक रिपोर्ट के साथ पटना से नीरज सहाय।
देखिए, बदलाव लाया नहीं लावे, मेरा अधिकार था वोट डालना और हमने अपने मत का अधिक मतलब किया। और विकास का जो मुद्दा होता है, और शिक्षा का विकास हो, चाहे बिजली पानी का जो भी विकास हो, उसी मुद्दा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मतदान किया है।
हाँ, महंगाई तो है, तो ये सब सोच समझ के दिए गए हैं। अब देखिए अब क्या होता है। अब तो हम लोग वोट दिए हैं, अब आगे सरकार जो बनते हैं वो क्या करते हैं।
चुनाव में तो हमेशा जैसे मुद्दे रहते हैं उसी तरह विकास का मुद्दा ज़्यादा हावी है, और स्वच्छ छवि और उन्नति चाहिए राज्य का। सड़क वगैरह का खूब बढ़िया व्यवस्था हो, मोहल्ले वगैरह में सड़क का थोड़ा सा लचर पचर व्यवस्था है वो अच्छा हो, और स्वच्छ छवि का हो जो कि काम करे बढ़िया से ईमानदारी से, और हर तबके के आदमी जो उनके यहाँ काम के लिए जाएं उनका निपटारा कर दो।
बुधवार को मतदाताओं के उत्साह और उनकी बात सुनने से तो ऐसा लगा कि चुनाव आयोग के प्रयास और आम लोगों में आई जागरूकता की वजह से मतदान प्रतिशत बढ़ने का क्रम तीसरे चरण में भी जारी रहने का कारण बना है। बुधवार को 6 जिलों में कुल 53.32% मतदान हुए। यह 2010 के विधानसभा चुनाव के 50% मतदान से 3% ज्यादा रहा। अच्छी बात तो यह रही कि तीसरे चरण में भी महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में 1.5% अधिक रही। मतदान का दूसरा पहलू यह रहा कि एक ओर जहां बक्सर में सबसे अधिक मताधिकार का प्रयोग किया गया, वहीं पटना जिले में मतदान का प्रतिशत सबसे कम रहा। सब कुछ प्रायः शांतिपूर्ण रहा, लेकिन बख्तियारपुर के एक केंद्र पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मतदान करने पहुंचे, तब लोगों ने स्थानीय मुद्दे को लेकर उनका छिटपुट विरोध किया। इन सब के बीच पूरी तरह से राजनीतिक माहौल में डूब चुके बिहार के अलग अलग दलों के नेताओं ने अपने अपने दावे किए। सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद के अनुसार,
निश्चित तौर पर बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने 10 वर्षों में काम किया है, तो ये बिहार की जनता को भी लगता है कि संसाधनों के अभाव के बाद भी बिहार आगे बढ़ा है, और ये श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता है, तो वो चाहेंगे कि इस मॉडल को आगे भी जारी रखा जाए।
दावों प्रतिदावों के बीच राज्य के मुख्य विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की बात कही गई। पार्टी के प्रदेश मंत्री धीरेन्द्र सिंह कहते हैं कि
देखिए, हम लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं, और इस चुनाव में विकास इतना हावी रहा कि हम लोगों का जो 50 सीट का चुनाव है उसमें 42 से 45 सीट लगभग बीजेपी क्लीन सीट हम लोग ऊपर जा रहे हैं, और ये जो चुनाव का मोड है, ये जो हमारा 185 का संकल्पना थी उसमें ये मील का पत्थर साबित हो रहा है।
राजनीतिक दलों के दावे जो भी हों, लेकिन मतदान के पहले तीन चरण में जिस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, इससे लगता है कि वो अपने अधिकार और सुरक्षा के पक्ष में माहौल बनाना चाहती हैं। नीरज सहाय, BBC पटना।
तो बिहार में तीन चरण का मतदान समाप्त हो चुका है, लेकिन राज्य में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी लगातार बनी हुई है, और माना जा रहा है कि सभी फैसलों पर अंतिम मोहर वही लगा रहे हैं। यहां सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की तरह क्या अमित शाह का जादू बिहार में चल पाएगा। राज्य में अभी दो चरण का मतदान बाकी है। हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव ने पटना पहुंचकर अमित शाह के कार्यप्रणाली का नजदीक से जायजा लिया। एक रिपोर्ट के साथ नितिन श्रीवास्तव।
इसी वर्ष 21 जून को पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए एक गुजराती शख्स दो महिला मुस्लिम योग ट्रेनरों से सबक ले रहे थे। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह अपने हर सार्वजनिक कार्यक्रम को खुद तय करते हैं, और उन्होंने तभी इशारा कर दिया था कि बिहार विधानसभा चुनाव पर फैसले वही लेंगे। 2014 के आम चुनावों में उत्तर प्रदेश में भाजपा के झंडे गाड़ने वाले अमित शाह की रणभूमि फिलहाल बिहार है। पटना के भाजपा कार्यालय में पिछले एक महीने से रोज करीब 500 लोगों का नाश्ता, लंच और डिनर बनाने के लिए हलवाई जुटे रहते हैं, और ये रौनक अमित शाह के सक्रिय होने के चलते ही है। वो बात और है कि वो कभी पार्टी कार्यालय जाके काम नहीं करते, होटल के कमरे से अपना दफ्तर चलाते हैं। लेकिन क्या बदला अमित शाह के बिहार में पूरी दखल देने से? समाचार एजेंसी PTI के पटना ब्यूरो चीफ संजय कुमार सिन्हा।
जैसे देखते हैं, हम किसी राज्य में और किसी भी राजनीतिक दल में ग्रुप्स बहुत होते हैं, और चुनाव के समय तो ये बिल्कुल सतह पे आ जाता है, चाहे टिकट का बंटवारा हो, चाहे एक दूसरे के प्रति काम करना, ये सब इनके आने और इनके रहने से, चूँकि डे टू डे ये सारा चीज़ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो एक तो ये फैक्शनल फाइट जो BJP के अंडर में है उसको बहुत हद तक इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया है। उसके अलावा बहुत नाराज जैसे सीनियर है, नाराजगी के बहुत कारण है कि इसको महत्व किसी को नहीं दिया गया, किसी के कहने पर टिकट नहीं दिया गया, तो इन सभी बातों को वो खुद चुके यहाँ बैठे हुए हैं, इसे किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं, वो खुद देख भी रहे हैं, उसको डील भी कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर वैसे तो प्रदेश का चुनाव है, मगर एक नेशनल लेवल का लॉजिस्टिकल सपोर्ट वो लेकर के आए हैं।
पिछले 5 महीने से प्रदेश भाजपा के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बेहतर बूथ मैनेजमेंट के आदेश मिलते रहे हैं, जो यूपी में भी हुआ था। राजधानी पटना में भाजपा के कम से कम 4 चुनावी वॉर रूम दिन रात सक्रिय हैं और किसी एक के भीतर जाने की कोशिश का मतलब भी मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ डालने जैसा है। पार्टी कार्यालय और सुशील मोदी के घर के अलावा पटना की SP वर्मा रोड पर भाजपा सांसद RK सिन्हा के बेटे अपने घर पर एक वॉर रूम के जरिए सीधे अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी अमित शाह ने यही किया था और सुनील बंसल समेत भाजपा संगठन के तमाम लोग दिन रात उनके लिए डेटा जुटाते थे। उनका अंदाज भी वही पुराना है। प्रदेश और स्थानीय नेताओं को इस बात की भनक भी नहीं होती कि वॉर रूम में काम किस चीज पर हो रहा है। बिहार में दैनिक भास्कर अखबार के राजनीतिक संपादक अरुण कुमार पांडे को सुनिए।
यहाँ अभी वो कैंप कर रहे हैं और हर रोज जो स्टेट लीडर्स हैं बंच ऑफ हमने भी वहाँ देखा कि स्टेट के लीडर से पहले वो दिन बैठक कर रहे हैं, फिर उसके बाद इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं, फिर इवनिंग में आई वाज टोल्ड बाई दोज पीपल कि शाम को इसी तरह से 12 बजे 1 बजे तक वो सीरीज ऑफ मीटिंग्स करते हैं, तो मच इंटरेक्टिव हैं और वो ग्राउंड लेवल तक फीडबैक लेते हैं। पूरी RSS लगी हुई है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है स्टेट के लीडर्स को अमित शाह के यहाँ रहने से, हमारा ये असेसमेंट है।
जानकार बताते हैं कि अमित शाह ने बिहार चुनाव की कमान संभालते ही उन जातियों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया था जो लालू यादव और नीतीश कुमार की फेरिस्त में नीचे आते थे। अमित शाह की हर चुनावी रणनीति पर गुजरात की छाप भी साफ दिखती है और भाजपा के वरिष्ठ नेता बताते हैं कि भाजपा ने इन चुनावों में पैसे को पानी की तरह बाहर रखा है। सूरत और अहमदाबाद से भी कई बड़े बिजनेसमैन बिहार का दौरा कर चुके हैं और अगर भाजपा पार्टी कार्यालय के सामने 2400 घंटे खड़ी रहने वाली SUV गाड़ियों पर नजर दौड़ाइए तो लगेगा कि प्रदेश में नीतीश की नहीं बल्कि भाजपा की सरकार है। शायद इसीलिए अमित शाह के नेतृत्व वाली भाजपा प्रचार के लिए 10 हेलीकॉप्टर रोज सेवा में इस्तेमाल कर रही है, जबकि नीतीश के पास 2 और लालू के पास प्रचार के लिए 1 हेलीकॉप्टर है। हालांकि कुछ विश्लेषक कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का दौर दूसरा था और अमित शाह ने यहां कुछ गलतियां भी की हैं। बिहार में टेलीग्राफ अखबार के संवाददाता नलिन वर्मा को सुनिए।
अमित शाह का एक जो दिल्ली में ऑरा है या सक्सेस जो हुआ 1.5 साल पहले हुआ उत्तर प्रदेश में लोकसभा इलेक्शन में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको इम्पोर्टेंस दिया पार्टी के अंदर, उनको बड़ा पोस्ट दिया, उसके पहले अमित शाह का हमको नहीं लगता है कोई ऑरा इंडिपेंडेंट है। और लोकसभा भी जीते तो हमको नहीं लगता है कि उसमें दूसरे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, वो नरेंद्र मोदी का इलेक्शन था और नरेंद्र मोदी ने एक सेट ऑफ ओल्ड लीडर्स को हटा करके अमित शाह को इम्पोर्टेंस दे दिया, उस तरह से उनका इम्पोर्टेंस बढ़ गया, बट हमको नहीं लगता है कि इट विल ट्रांसलेट एट द लेवल ऑफ वोटर्स।
अमित शाह के समक्ष पिछले 2 महीनों में चुनौतियां भी सिर्फ स्थानीय नहीं रही हैं। दादरी में बीफ हत्याकांड और बाद में जनरल VK सिंह के बयान पर बिहार में भाजपा के सहयोगी दलों ने ही पार्टी से सफाई मांगी। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण पर एक विवादित बयान दिया तब अमित शाह पटना के मौर्या होटल में डेरा डाले हुए थे। अगले दिन सुबह ही 8 बजे से उन्होंने अपने कमरे से फोन करके प्रदेश भाजपा के सभी बड़े नेताओं को दहाड़ दहाड़ के एक ही संदेश दिया, हम आरक्षण का पूरा समर्थन करते हैं और आप सभी को यही बात दोहरानी है। ये अमित शाह के काम करने का तरीका है, जिसे बिहार का मतदाता पसंद करेगा या नकारेगा इसका पता बहुत जल्द लगने वाला है। नितिन श्रीवास्तव, BBC पटना।
भारत की राजधानी नई दिल्ली में इन दिनों भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन की मेजबानी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय जगत में की सुर्खियों में है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अफ्रीकी देशों के नेताओं से अनौपचारिक मुलाकात की और आज अफ्रीकी देशों के सभी नेता एक मंच पर भारत अफ्रीका संबंधों पर चर्चा करेंगे और मौजूदा संबंधों को विस्तार देने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में जारी ये कोशिशें भारत के लिए कितना महत्व रखती हैं और भारत इससे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए संदीप सोनी ने बात की अफ्रीका मामलों के जानकार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व VC और दिल्ली स्थित साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर RG हर्षी से।
भारत के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है क्योंकि ये तीसरी दफा हम मिल रहे हैं, पहले दिल्ली में मिले 2008 में, उसके बाद 2011 में मिले और 2015 में मिलने जा रहे हैं। हम लोगों का आपस में जो व्यापार का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। $70 बिलियन का ट्रेड तो अभी है, 7 बिलियन से ज्यादा हम लोगों को उन्हें उनको कंसेशनल लोन भी दिया है और भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमिक है ना बहुत बड़ी, तो अफ्रीका एक ऐसी जगह है जहाँ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनकी कमोडिटी जो प्राइमरी कमोडिटी जिसको कहते हैं उसकी हमें जरूरत है, जैसे ऑयल हो, नेचुरल गैस हो। सूडान में हम ऑलरेडी है, नाइजेरिया में है, अंगोला में है, और ऐसे मिनरल्स हमें जितने मिलेंगे उतनी इंडस्ट्री हमारी आगे बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी। जो इकोनॉमी होती है वो हंग्री होती है, इंडिया की जैसे राइजिंग इकोनॉमी है वो इज हंग्री फॉर एनर्जी, और एनर्जी के लिए हमें अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पश्चिम एशिया के जो सारे देश है वो हमेशा स्टेबल सप्लाई दे सकेंगे इसका भरोसा नहीं है, वहाँ की स्थिति इतनी नाजुक है। तो हमें अलग अलग किस्म के लोगों को, देशों को कल्टीवेट करना पड़ेगा, और अफ्रीकन देश तो उसमें बहुत अच्छे, साउथ अफ्रीका हो, नाइजेरिया हो, गैबन हो, अंगोला हो, सूडान हो, तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि होगी, और इनके साथ हम अच्छे संबंध जोड़े। और भारत वहां गया भी है, बहुत तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, केवल एक्सप्लॉयटेशन नहीं तो पार्टनरशिप की बात भी चल रही है हर तरह से, व्यापार के हिसाब से, सांस्कृतिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, तो इसका महत्व है ही। लेकिन हिंदुस्तान को अगर आखिरी में यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट जगह चाहिए तो अफ्रीकी राष्ट्रों का सपोर्ट हमें चाहिए उसके लिए, तो भारत को अफ्रीकी देशों का सहयोग बहुत जरूरी है।
ऐसी खबरें आती रही हैं कि अफ्रीका में चीन भारत से बहुत पहले अपने पैर एक तरह से पसार चुका है, पैर मजबूती से जमा चुका है, ऐसे में भारत की इस तरह की कोशिशें अफ्रीका में पैठ बनाने की कितनी कामयाब हो पाएंगी?
उनकी तुलना तो हम कर नहीं सकते, चीन का व्यापार 200 बिलियन डॉलर का है, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग भारत करता है, इससे भारत की इमेज बहुत ज्यादा अच्छी है, और आजकल चाइना का जो इकोनॉमी थोड़ा सा डिसेलरेट होता जा रहा है ना, उसका लाभ भारत को होगा, और ये सब धीरे धीरे चलता है। भारत का प्राइवेट सेक्टर वहां बहुत जा चुका है, चाइना तो सारी स्टेट सेक्टर से डायरेक्टेड इकोनॉमी है, लेकिन हमारे यहाँ की किर्लोस्कर, महिंद्रा, रिलायंस, हिसार, मित्तल, एयरटेल कौन नहीं जानता अफ्रीका में, तो भारत तो जा चुका है, हमारी यूनिवर्सिटीज वहां पहुंच जाएगी, इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड बनाने जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इनको दे रहे हैं ज्ञान, नारायण मूर्ति भी जाके आए वहां, हमारा ट्रेड कितना कम था और अब तो 70 बिलियन हो चुका है, और ये बढ़ने ही वाला है।
ये जो मुलाकात हो रही है, अफ्रीका समिट हो रहा है, इस पर चीन की भी नजर होगी, और इससे जो नतीजा निकलेगा, जो कुछ भी आपको लगता है, उससे कुछ चीन की रणनीति पर भी किसी तरह का बदलाव होगा?
चीन की रणनीति बदलाव जरूर होगा, क्योंकि चीन हमें बड़े गौर से देख रहा है, जापान, चीन, साउथ कोरिया सारे रेजिंग वहां जा रहे हैं, लेकिन चीन वहां एकदम एस्टेब्लिश्ड है, तो उसी अंदाज से चीन भी कुछ अपने आप में बदल करेगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं लगता, यानी वो भी अनेक तरह के प्रोग्राम को अपने प्रोत्साहन देगा, और भारत को शह देने का भी कोशिश कर सकता है, अच्छे गुड्स ज्यादा बेचेगा चीन भारत से, और वो भी कुछ ऐसी संस्थाएं खड़ी कर सकता है, जैसे अब आदिस अबाबा की पूरी जो अफ्रीकन यूनियन की बिल्डिंग है वो चीनी लोगों ने बिल्डिंग बनाई है, तो उस तरह के काम भी चीन काफी करेगा। जब स्पर्धा होती है, कंपटीशन होती है, तो चीन हमेशा आगे बढ़ता है, बड़ा प्लान्ड आगे बढ़ता है, तो उसमें मुझे कोई शक नहीं लगता।
भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से भारत को होगा फायदा, चीन रखेगा नजर। अफ्रीका मामलों के जानकार प्रोफेसर जी हर्षे से बात कर रहे थे संदीप सोनी। जब किसी इलाके में सूखा पड़ता है तो वह दलित या स्वर्ण में भेद नहीं करता, मगर ये बात शायद महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के गांव गोजवाड़ा के लोग नहीं समझ पाए हैं। एक तो खेती ही उजड़ी हुई है, ऊपर से दलितों के खेती करने पर मराठा समाज उनसे नाराज हो जाता है। इस उलझे हुए रिश्ते का सिरा पकड़ने की कोशिश की है बीबीसी संवाददाता अजय शर्मा ने।
मराठवाड़ा के उस्मानाबाद जिले के गांव गोजवाड़ा में आपको सूखे की वजह से दरकी हुई जमीन मिलेगी तो दरके हुए इंसानी रिश्ते भी मिलेंगे। सूखे की स्थिति का आकलन करने गई संवेदना यात्रा के संयोजक योगेंद्र यादव के साथ जब हम उस्मानाबाद जिले के इस गांव में घुसे तो इतना तो साफ था कि अगर मराठों को खेतों में पानी चाहिए तो दलितों को भी पानी की जरूरत है, फिर भी दलितों को अपनी या सरकारी जमीन पर खेती की इजाज़त नहीं। गोजवाड़ा गांव में मराठों और दलितों का फीसद 80 और 20 का है। ज्यादातर दलितों के पास अपनी जमीन नहीं है और वो सवर्णों के खेत में मजदूरी करते हैं। अगर पेट भरने के लिए वो खाली पड़ी सरकारी यानी गायरान जमीन पर खेती करते हैं तो इस पर झगड़े होते हैं। गांव के अशोक वासुदेव तोड़कर बताते हैं कि दलित 1976 से गायरान जमीन पर खेती की मांग कर रहे हैं। प्रशासन के एक आदेश में उन्हें इजाजत मिलती है तो दूसरे में उनसे ये हक छीन लिया जाता है। पिछले साल गांव के कुछ सवर्णों ने सरकारी जमीन पर खेती कर रहे कुछ दलितों के खेत में अपने जानवर छोड़ दिए थे और मारपीट की थी।
दो साल से हमारे यहाँ जिले में सूखा पड़ा है, दुष्काल पड़ा है, उस वजह से खेती का भी काम नहीं मिल रहा है। हम इस वजह से हमें स्थलांतर करना पड़ रहा है। हमें हमारे कुछ कुटुंब अभी बारिश हुआ नहीं इस वजह से मुंबई को गए हैं और वहाँ उनका उदर निर्वाह करने के लिए रोजगार करते हैं, बांधकाम काम करते हैं, किसी की हमाली करते हैं। हमारे पीने के पानी की समस्या अभी सूखे की वजह से बहुत गंभीर बन गई है। हमारे जो दलित बस्ती है खाली एक बोर है, उस बोर में भी पानी नहीं लगता है, वो 500 फीट से नीचे गया है। फार्मर्स है उनके खेतों में से हमें पानी लाना पड़ता था और उन्हें रिक्वेस्ट करना पड़ता था, उनके हाथ पाँव जोड़ना पड़ता था, तब जाके वो दो तीन घाघर हमारे लिए पानी देते थे। तो हमारे बच्चे हमारी बेटियां उन्हें दो दो अढ़ाई अढ़ाई किलोमीटर की दूरी से पानी अपने माथे पे अपने सर पे लेके आते थे।
असल में बारिश ना होने से जो सूखा पड़ा उसमें रही सही खेती भी चली गई है। महादेव विट्ठल उन कुछ दलितों में हैं जिनके पास थोड़ी सी खेती है। उन्होंने मुंबई में मजदूरी करके कमाए पैसे से गांव में 30 गुंटा जमीन ली थी, पर उसमें भी परिवार का खर्च नहीं चलता। तब उन्होंने सरकारी जमीन पर खेती शुरू की।
जब तुम्हारे खेती में तुम्हारे अनाज में हमारा जानवर गया तो तुम लोग मारपीट करके उसको दंड धूप करते हैं। जब तुमने अपने खुद के सब गाँव के जानवर खेती में डाल दिया तो कैसे करेंगे? गांव के आगे क्या कर सकता है, किसको रोकता है? हमें यहाँ चलो रुकने में गया, एक दो आदमी को मार दिया तो फिर क्या करें? ये क्योंकि समाज छोटा है ना, डरपोक है ना, गरीबी डरपोक है ना, पैसे वाला नहीं ना। उन लोग क्या पापला सर क्या बड़ा आदमी आया कोई, अरे मेरे को इसने मारा है थप्पड़, अरे ले ये चाय पानी ले जा, थप्पड़ वाला भी गया और वही भी गया, कौन देखेगा? हमारा कोई दाँत फिराद नहीं, गरीब का कोई दाँत फिराद लेता है क्या?
महादेव पर कर्ज भी है जिसकी वजह से कुछ महीने पहले उनके एक बेटे ने खुदकुशी कर ली थी। वो साफ कहते हैं,
कौन चाहेगा, गांव कैसा चाहेगा मेरे को मेरे खेती चाहिए? उनका काम कौन करेगा? मैं मेरे खेती में काम करेगा तो उनका काम कौन करेगा? ऐसा कैसा चाहेंगे उन लोग?
दलित बस्ती की महिलाएं मानती हैं कि सूखे से बेशक मराठा समाज भी परेशान है, पर उनकी दिक्कतें दोगुनी हैं। अश्विन भारत गोड़े ने मुझे बताया,
मजदूरी करते है ना, खेत में जाते हैं मजदूरी करते है।
आप भी जाते हैं और आपके पति भी जाते हैं?
हाँ, हम भी जाते हैं, हमारे पति भी जाते हैं। हमें 100 रुपये मिलते हैं, हमारे आदमी को 200 रुपये मिलते हैं। रोज का कभी लगता है कभी नहीं लगता, हर दिन नहीं काम चलता।
इसी दलित समाज की ज्योति मिट्ठू लोंडे पहली लड़की हैं जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हैं और पढ़ने के लिए वाशी के एक कॉलेज में जाती हैं। उन्हें इसके लिए अपने पति और परिवार से पूरा समर्थन हासिल है। जब मैंने पूछा कि वो क्यों पढ़ रही हैं तो उनका कहना था,
जब हो जाएगा ग्रेजुएशन पूरा होगा समाज के लिए भी अपने कुछ करूंगी, अपने समाज के लिए कुछ करूंगी।
क्या करना चाहती हैं?
कुछ नहीं, अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहती हूं।
आपको लगता है कि क्या क्या समस्याएं हैं समाज में? यहां पर
बहुत समस्याएं हैं, वैसे तो पानी की समस्या है, यहां के लोगों को छत, घर पे छत नहीं है ठीक से, उसी तरह बहुत खेत नहीं है, दूसरों के लोगों के खेत में जाकर काम करना पड़ता है, वो भी मिलता है नहीं मिलता है।
तो आप इसको को बदलने के लिए क्या करेंगी? आप सरकार से कहेंगी कि इसको बदले?
ये तो आपका काम है पहुंचाना सर सरकार तक।
बिल्कुल हमारा काम है, लेकिन आप उठाएंगे तब हम मांग को आगे ले जाएंगे।
हम उठाते हैं ना, इसीलिए तो हमारे यहाँ आंदोलन होते हैं ना।
ज्योति ने बीए में विषय लिए हैं राजनीति शास्त्र और इतिहास। जब मैंने पूछा कि यही विषय क्यों, तो बोली इससे जानकारी मिलती है। तो मराठे दलितों के बारे में क्या सोचते हैं, इसे जानने के लिए मैंने देवी चंद थोरबोले से बात की। देवी चंद वैसे 5 एकड़ खेत के किसान हैं, लेकिन बारिश ना होने से उनकी खेती सूख गई है। अब वो ड्राइवर बन गए हैं।
मराठा आदमी को कोई परेशानी है या नहीं, ये तो मैं नहीं बोल सकता है।
नहीं, बाकी आपने आपका,
तरफ से
आपका क्या सोचना है?
मेरा कहना तो है इनको दे दो, जो दो दो एकड़ चार चार एकड़ दे दो, बाकी का कहना पूरे गाँव का मैं बोल नहीं सकता है, क्योंकि हर ढंग का आदमी होता है।
असल में दलित दो मोर्चों पर एक साथ जूझ रहे हैं, मगर उनके सामने सवाल है कि वो सूखे से लड़ें या मराठों से, क्योंकि सूखा तो दोनों का ही दुश्मन है। अजय शर्मा, BBC, गोजवाड़ा गांव, जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र।
आपको अजय शर्मा की ये विशेष रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर लिखिएगा। और अब समय है समाचार पत्रों की समीक्षा का, और वात्सल्य अखबारों के पुलिंदे के साथ मेरे सामने बैठे हैं। वात्सल्य, क्या कहते हैं आज के अखबार?
जी सुशीला जी, जो अखबार आज के मैं देख रहा हूँ वो फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग के रंग में रंगे हुए हैं।
यानी बिहार चुनाव का जिक्र पहले प्रमुखता से नहीं
जी,
है
जी, जी बिहार चुनाव को भी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है, लेकिन सिंगल कॉलम से ज़्यादा स्पेस नहीं मिला है। और ये जानकारी दी है कि 53.32% वोट डाले गए बिहार में, केवल इतने में बातें समेट दी गई हैं। दैनिक भास्कर ने ज़रूर एक फ़ोटो लगाया है, जो पटना की दो बहनें हैं सबा और फरहा, उनकी एक तस्वीर छापी है और कैप्शन दिया है, शरीर दो लेकिन वोटर कार्ड एक, दोनों का एक ही वोट, दोनों ने पहली बार वोट डाला है इस चुनाव में।
जी उनके सिर जुड़े हुए हैं।
जी जी बिल्कुल। फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग कल आईआईटी दिल्ली में थे और उन्होंने एक टाउन हॉल सेशन वहां किया था, उससे जुड़ी खबरें ज्यादातर अखबारों ने उसको बहुत प्रमुखता से छापा है। द इंडियन एक्सप्रेस ने जकरबर्ग की तस्वीर के साथ कैप्शन दिया है, देयर मार्क मूवमेंट, मतलब इस कैप्शन से ही समझ में आ जाता है कि कितनी इंपॉर्टेंस इस इवेंट को मिली है। दैनिक जागरण की हेडिंग है, दुनिया को जोड़ने का केंद्र है भारत। ये दरअसल जकरबर्ग का एक बयान है जिसको हेडलाइन बनाया गया है। जनसत्ता ने भी इसको लीड खबर बनाया है और हेडिंग दिया है, जीरो रेंटिंग प्लान के बिना नेट निरपेक्षता नहीं। अमर उजाला ने इस खबर के लिए हेडिंग दिया है, भारत बिना दुनिया से जुड़ना नामुमकिन। ये भी एक बयान था मार्क जकरबर्ग का कल, इसे इन अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। एक विवाद जो शुरू हुआ है कि लेखकों के बाद फिल्मकारों ने भी अपने पुरस्कार लौटाने शुरू कर दिए हैं। कल फिल्म मेकर दिवाकर बनर्जी समेत कई फिल्मकारों ने पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया था। इस खबर को भी अखबारों ने बहुत अच्छा स्पेस दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स का हेडिंग है, आफ्टर राइटर्स 12 फिल्म मेकर्स रिटर्न देयर नेशनल अवार्ड्स। जनसत्ता ने इस खबर के लिए हेडिंग दिया है, FTII की हड़ताल खत्म, 10 फिल्मकारों ने लौटाए पुरस्कार। हिंदुस्तान ने भी इसको लीड खबर बनाया है। एक और विवाद जो दो दिन पहले शुरू हुआ था, केरल हाउस में बीफ परोसने से जुड़ा हुआ था, वो विवाद और उससे जुड़ी खबर भी अखबारों में बनी हुई है। द हिंदू ने इससे जुड़ी खबर को ही लीड खबर बनाया है। अखबार ने हेडिंग दी है, बुफेलो मीट बैक इन केरला हाउस। जनसत्ता ने इसको सेकंड लीड खबर बनाया है और अखबार ने हेडिंग दिया है, केरल सरकार ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। और एक खबर उन लोगों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो दिवाली के मौके पर पटाखे चलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे और वो फैसला कल आया, और इस फैसले को लेकर भी खबर बनाई गई है। दिवाली के मौके पर पटाखों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे लीड खबर बनाया है, हिंदू ने इसे एंकर खबर बनाया है, दैनिक भास्कर ने भी इसे लीड बनाया है।
जी समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वात्सल्य, और अब सुन लेते हैं खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले भारत के लिए राहत की खबर है। टीम के ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने भरोसा दिलाया है कि वो पूरी तरह फिट होने के करीब हैं और वो दक्षिण अफ्रीका के साथ होने वाली आगामी टेस्ट सीरीज में टीम के साथ जुड़ सकेंगे। अश्विन को कानपुर में प्रोटीज टीम के खिलाफ हुए पहले वनडे मैच के दौरान चोट लगी थी, इसके बाद से वो टीम में वापसी नहीं कर सके। भारतीय टीम को ये सीरीज 2-3 से गंवानी पड़ी। और वहीं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और IPL से संन्यास लेने वाले भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को BCCI दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर सम्मानित करेगा। सहवाग ने 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। इससे पहले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर वनडे सीरीज के आखिरी मैच में जहीर खान को भी BCCI ने सम्मानित किया था। जहीर ने भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला 3 दिसंबर से खेला जाना है। और एक खबर IPL से, इंडियन प्रीमियर लीग में 2 बार खिताब जीतने वाली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9वें सीजन से पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज साइमन कैटिच को अपना नया सहायक कोच नियुक्त किया है। कैटिच दक्षिण अफ्रीकी जैक कैलिस के सहायक होंगे, जिन्हें हाल ही में मुख्य कोच नियुक्त किया गया। साइमन कैटिच ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 56 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। सलामी बल्लेबाज होने के अलावा वो चाइनामैन गेंदबाज भी थे। उन्होंने 2014 में पर्थ स्कॉर्चर्स को बिग बैश लीग का खिताब दिलाने के बाद संन्यास लिया। 40 वर्षीय कैटिच फिलहाल ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल लीग क्लब वेस्टर्न सिडनी जॉइंट्स के साथ ऑपरेशन मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
खेल समाचार सुना रही थी राखी शर्मा, और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में भी वोट डालने के मामले में महिलाएं पुरुषों से आगे रहीं। तीसरे चरण की 50 सीटों पर कल हुए मतदान में कुल 54% महिलाओं ने वोट डाले। सीरिया संकट के हल के लिए वियना में होने वाली बातचीत में ईरान भी शरीक होगा। फीफा के निलंबित अध्यक्ष सेप ब्लैटर ने कहा है कि 2018 वर्ल्ड कप को लेकर मतदान होने के पहले ही मेजबानी रूस को देने पर सहमति बन गई थी। अमरीकी प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों ने पॉल रॉयन को स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया है। ग्रीक कोस्टगार्ड ने नाव डूबने के बाद समुद्र में फंसे 240 प्रवासियों को बचा लिया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के स्पेसक्राफ्ट रोसेता से मिली जानकारी के मुताबिक ग्रहों और धूमकेतुओं के अस्तित्व में आने से जुड़े मौजूदा अनुमान सही नहीं है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे वात्सल्य राय। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे 8 बजे विश्व भारती में ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाज़त।